19 मई दिन मंगलवार, दिन भर के पहले अंक के साथ मैं रेहान फजल। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रही लड़ाई राष्ट्रपति तक पहुंची, क्या कहते हैं कानून विशेषज्ञ।
चीफ मिनिस्टर को मैं ये कहता कि आपकी पावर सीमित पावर है, सीमित में आप जो है सोवरेन हैं, लेकिन जो आपको नहीं दिया गया है उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको वहाँ गवर्नर की प्राइमेसी को मानना पड़ेगा।
जिक्र होगा लीची से बनने वाली वाइन का और बताएंगे किस तरह एक अफगान व्यक्ति को लगाए गए भारतीय शख्स के हाथ।
मिस्टर जॉर्ज का जो डेथ हुआ, ब्रेन डेथ हुआ, उनका ब्लड ग्रुप इनका एक ही था, इसलिए हमने मिस्टर जॉर्ज का बात किया तो उन्होंने के बाद बताया कि डोनेट करने के लिए तैयार है।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार समीर आत्मज मिश्र से। नौकरशाहों की नियुक्तियों पर उपराज्यपाल नजीब जंग से चल रहे टकराव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। केजरीवाल ने राष्ट्रपति के सामने नौकरशाहों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया और उनसे उपराज्यपाल की शिकायत की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रपति के साथ केजरीवाल और उनकी अच्छी बातचीत हुई। अफगानिस्तान में एक अदालत ने इसी साल मार्च महीने में पीट पीट कर मारी गई महिला फरखंदा के मामले में 11 पुलिस अफसरों को दोषी पाया है। अफसरों पर महिला को बचाने में नाकाम रहने के आरोप थे। अदालत ने काबुल पुलिस के इन 11 अधिकारियों को एक एक साल की सजा सुनाई है। जज सफीउल्ला मुजद्दी का कहना था कि अभियुक्तों के पास अपील करने का अधिकार है। फरखंदा की हत्या के मामले में अदालत ने 6 मई को 4 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। फरखंदा की हत्या के बाद काबुल में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। इराक के रमादा शहर में इस्लामिक स्टेट के चरमपंथियों के बढ़ते प्रभाव के कारण हजारों इराकी नागरिक शहर से पलायन कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में करीब 25,000 लोग पूर्व में बगदाद की ओर आ रहे हैं। पिछले महीने रमादी शहर के आईएस के कब्जे में आने के बाद भी करीब 1.5 लाख लोग शहर छोड़कर बगदाद आ गए थे। इस बीच सहायता एजेंसियों ने अस्थायी शिविर बनाकर वहां खाना, पानी और दवाइयां जैसी जरूरी चीजें बांटनी शुरू कर दी हैं। इराक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संयोजक लीसा ग्रैंड ने कहा है कि बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन से जरूरी सामग्री कम पड़ रही है। रमादी से पलायन करने वालों की संख्या हजारों में है। वे अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं और सुरक्षित स्थान पर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इराक सरकार उनकी मदद के लिए काफी कुछ कर रही है और संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियां भी सरकार की मदद कर रही हैं। लेकिन हमारी समस्या ये है कि हमारे पास जरूरी संसाधन कम पड़ गए हैं और पैसा भी लगभग खत्म हो गया है। ये थे इराक में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संयोजक लीसा ग्रैंड के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड की सैन्य सरकार का कहना है कि वह अपने नए संविधान के लिए जनमत संग्रह कराएगी। इस संविधान को एक साल पहले दोबारा लिखा गया था जब सेना ने सत्ता संभाली थी। बताया जा रहा है कि यह कदम आम चुनाव को टालने के कारण किया जा रहा है। इससे पहले देश के अपदस्थ प्रधानमंत्री इंगलक श्रीनिवात्रा बैंकॉक की एक अदालत में पेश हुई जहां उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे की शुरुआत हुई। सीरिया से मिल रही खबरों में कहा गया है कि विद्रोहियों ने उत्तर पश्चिम प्रांत इदलिब में सरकारी सेना के ठिकाने को अपने नियंत्रण में ले लिया है। एक ब्रितानी इतिहासकार ने दावा किया है कि उसने मशहूर नाटककार विलियम शेक्सपियर की उनके जीवन काल में बनी एकमात्र तस्वीर को खोज निकाला है। मार्क ग्रिफिथ को ये चित्र 16वीं शताब्दी की एक किताब में मिला है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच चल रहे विवाद के बीच उपराज्यपाल नजीब जंग ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उन्हें अपने पक्ष से अवगत कराया है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने भी राष्ट्रपति से मिलकर अपना पक्ष उनके सामने रखा है। दोनों के बीच जारी अधिकारों की लड़ाई में संविधान के विशेषज्ञों और नौकरशाहों की राय क्या है, जानने की कोशिश की है जुबैर अहमद ने इस रिपोर्ट में।
पिछले हफ्ते जब दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव 10 दिनों की छुट्टी पर चले गए तो उनकी जगह कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति होनी थी। उपराज्यपाल नजीब जंग ने शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त किया। इस पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भड़क उठे। उनका कहना था कि ये फैसला मुख्यमंत्री का होना चाहिए। उनके विरोध के बावजूद शकुंतला गैमलिन ने अपना काम संभाल लिया। संविधान के विशेषज्ञों के अनुसार श्री केजरीवाल का दावा मजबूत है, लेकिन दोनों ने जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरज सिंह कहते हैं,
संविधान की व्यवस्था के अनुसार चीफ सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट बिना चीफ मिनिस्टर की सलाह के नहीं हो सकती। वहाँ निश्चित रूप से राज्यपाल जी ने एक जिम्मेदारी का परिचय नहीं दिया है जो उस पद से उम्मीद की जाती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये क्राइसिस सिर्फ जो है राज्यपाल जी ने ही क्रिएट किया है। यहाँ मैं ये मानूंगा कि मुख्यमंत्री जी को भी जो है एक जिम्मेदारी की भावना से अच्छे संबंध गवर्नर के साथ रखने चाहिए। हर एक चीज में आप षड्यंत्र और कॉन्स्पिरेसी नहीं देख सकते।
इस घटना ने अगले दिन एक और दिलचस्प मोड़ ले लिया जब सेवाओं के प्रमुख सचिव आनिंदो मजुमदार अपने दफ्तर आए। उनके दफ्तर में ताला लगा था। पता चला मुख्यमंत्री के दफ्तर से ताला लगाने का आदेश आया था। आनिंदो मजुमदार ने ही शकुंतला गैमलिन को कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाने का आदेश जारी किया था। मजुमदार का अपमान यहीं खत्म नहीं हुआ। उनकी जगह पर मुख्यमंत्री ने राजेंद्र कुमार को नियुक्त कर दिया। नजीब जंग ने इस फैसले को असंवैधानिक घोषित कर दिया। संकट और बढ़ा। दिल्ली के भूतपूर्व मुख्य सचिव उमेश सैगल के अनुसार हर क्षेत्र में आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होता है, जो दिल्ली का एक प्रशासक भी होता है।
अगर दिल्ली सरकार में और भारत सरकार में कोऑर्डिनेशन जो है वो ये करेंगे, इनके पास उन्होंने ओवरराइडिंग पावर दी हुई है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में। कितने सब्जेक्ट थे जो वो भी जो कि असेंबली के अधिकार क्षेत्र में है, उसमें भी अगर ये अग्री नहीं करते तो ये मामला होम मिनिस्ट्री को रेफर कर सकते हैं। अब ये जो पोजीशन है मेरे ख्याल लोकल पॉलिटिशियंस को एक्सेप्टेबल नहीं हो रही और वो अपना इधर उधर पैर मार रहे हैं।
दिल्ली को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा हासिल नहीं है, इसके मुख्यमंत्री के अधिकार सीमित होते हैं, जैसा कि सूरज सिंह ने कहा।
अगर मैं इसमें सलाह देता तो मैं राज्यपाल जी को ये सलाह दूंगा कि आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का सम्मान करें और लैंड और लॉ एंड ऑर्डर के अतिरिक्त सभी चीजों में आप बाध्य हैं। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर को मैं ये कहता कि आपकी पावर सीमित पावर है, सीमित में आप जो है सॉवरेन हैं, लेकिन जो आपको नहीं दिया गया है उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन एग्जिस्टिंग सिस्टम में आपको वहाँ गवर्नर की प्राइमेसी को मानना पड़ेगा।
अरविंद केजरीवाल और नजीब जंग के बीच टक्कर खत्म होती नजर नहीं आती। मुख्यमंत्री ने इस बारे में कानूनी सलाह के लिए संविधान के माहिरों से संपर्क करने का फैसला किया है। जुबैर अहमद, बीबीसी दिल्ली।
इस बीच अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ बातचीत पूरी हो गई है। इस समय हमारे साथ हैं विनीत खरे। बाहर आकर कुछ विवरण दिया है केजरीवाल ने?
केजरीवाल से तो बात नहीं हुई, लेकिन जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री को बाईपास करके और उनके शब्दों में जो अफसर हैं दिल्ली के प्रशासन के उनको धमका कर जो जिस तरह की कार्रवाई की जा रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है और वो दिल्ली को इस तरह से चला रहे हैं जैसे दिल्ली राष्ट्रपति शासन के अंदर हो। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जो राष्ट्रपति से मिले, उन्होंने पूरी शिकायत की कि जिस तरह से शकुंतला गैमलिन को एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी बनाया गया वो सही नहीं था, उनकी जो सोच थी उसको दरकिनार करते हुए। ऐसी रिपोर्टें हैं कि मनीष सिसोदिया ने कल जो सेक्रेटरीज हैं और दिल्ली के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें उनके साथ एक बैठक आयोजित की है 10 बजे करीब। इसके अलावा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनकी मुलाकात हुई, ऐसी रिपोर्टें हैं होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से, और उन्होंने ये शिकायत की है कि जिस तरह से दिल्ली में उनके ऑर्डर्स को चुनौती दी जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से, तो उस पर सरकार को एक रुख अपनाना होगा और एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है उनका मानना है लेफ्टिनेंट गवर्नर का। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ घंटों में ये किस रुख में ये जाता है पूरा मामला।
बहुत धन्यवाद आपका विनीत खरे। अफगानिस्तान की एक अदालत ने 11 पुलिस कर्मियों को 1 साल की सजा सुनाई है क्योंकि वो एक महिला को भीड़ द्वारा मारे जाने से नहीं बचा पाए थे। ये घटना मार्च में हुई थी। 8 अन्य लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। जज सैफुल्ला मोजदादी ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये लोग फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं।
حق استیناف طلبی امید دو گروپ یا دو طبقه را که برشان ابلاغ کردیم
افغان جج کے شبد۔ ہمارے ساتھی روہت جوشی نے بی بی سی پشتو سیوا کے سعید انور سے بات کر اس سزا کا وورن مانگا۔
آج کابل کے ایک پرائمری کورٹ میں سرخندہ قتل کیس کے حوالے سے 19 पुलिस ऑफिशल्स की केस के हवाले से हुक्म जारी की। 19 पुलिस में से 11 पुलिस को 1 साल कैद की सजा सुनाई है और जज का कहना था कि 11 पुलिस अफसरान ड्यूटी के वक्त अपनी ड्यूटी सही तरीके से सर अंजाम नहीं दिए हैं और इनमें से 8 दीगर पुलिस एहलकार जो हैं वो बरी हुए हैं।
इससे पहले भी इसी मामले में अदालत ने कुछ आम लोगों को सजा सुनाई थी पिछले दिनों।
बिल्कुल, ये इससे पहले अदालत ने जिन लोगों के खिलाफ सजा सुनाई थी वो लोग थे जो डायरेक्टली फरहुंदा के कत्ल में मुलव्वस थे। उनके फोटोज, उनकी वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया में आए थे कि वो पत्थर उठाकर फरहुंदा को मारते हैं, उसे आग लगाते हैं। उस बुनियादों पर जो सोशल मीडिया में तस्वीर आई, फुटेजेस आए थे, उन बुनियादों पर इससे पहले उन लोगों पर सजा सुनाई गई है जिनमें 4 लोगों को सजाए मौत है और 16 दिगर अफराद पर मुख्तलिफ मुद्दत की कैद सुनाई गई है।
पिछली बार जब सजा सुनाई गई थी तो काफी लोग जो प्रदर्शनकारी थे उस दौरान के, वो लोग काफी नाराज थे इस फैसले पर, तो अभी उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया है जब ये पुलिस कर्मियों को भी जब सजा सुनाई गई है?
जी बिल्कुल, उस वक्त सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट की तरफ से रद्दअमल सामने आया था, फरहुंदा के खानदान की तरफ से रद्दअमल सामने आया था, जो वो भी उससे राजी नहीं थे। अभी जब हमने फरहुंदा के फैमिली के साथ बात की, फरहुंदा की भाई ने बताया कि ये अभी तहकीक कर रहे हैं ताकि उन्हें ये मालूम हो कि अफगानिस्तान के अस्करी कवानीन में इस तरह के मसाइल के लिए कैसे सजा नजर में रखी गई है, उसके बाद वो अपना रद्द अमल देंगे। आज के अदालत के हुक्म के हवाले से अभी तक कोई खास रद्द अमल सामने नहीं आया है।
बीबीसी संवाददाता सईद अनवर से बात कर रहे थे रोहित जोशी। और इस बीच समाचार आ रहे हैं कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम विस्फोट हुआ है। सईद अनवर एक बार फिर टेलीफोन लाइन पर हैं, बताइए क्या डिटेल्स हैं सईद आपके पास?
जी, आज अफगानिस्तान के वजारत इंसाफ या जस्टिस मिनिस्ट्री के कार पार्किंग में एक खुदकुश हमला हुआ। हमला उस वक्त हुआ जब जस्टिस मिनिस्ट्री के स्टाफ निकल के घर जा रहे थे। मकामी हुकाम का कहना है कि इस हमले में कम से कम 5 लोग मारे गए हैं जो आम शहरी हैं। अफगानिस्तान के वजारत दाखिला के तर्जुमान सिदीक सिद्दीकी ने बीबीसी को बताया कि इस हमले में 24 दीगर अफराद जख्मी हुए हैं और जख्मी भी ज्यादातर तादाद में आम शहरी बताए गए हैं। तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और तालिबान का दावा है कि इस हमले में कई वजारत इंसाफ के कारकुन मारे गए हैं। लेकिन अली शाहिदीन ने बीबीसी को बताया कि जब खुदकुश हमला आवार कार पार्किंग में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, उस वक्त ज्यादा वजारत के कारकुन ज्यादा कार पार्किंग में मौजूद नहीं थे।
बहुत शुक्रिया आपका सईद अनवर काबुल से। पेरिस के एक मानवाधिकार संगठन इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि मिस्र के सुरक्षा बल विरोधियों को चुप कराने के लिए भारी पैमाने पर यौन हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि मिस्र में इस तरह से शोषण करने की शुरुआत 2013 में सेना द्वारा किए गए तख्त पलट के बाद हुई। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुना रहे हैं रोहित जोशी।
पेरिस में मौजूद इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ने अपनी एक जांच के बाद मिस्र के अधिकारियों पर मानवद्वेषी राजनीतिक रणनीति अपनाने का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि मिस्र के सुरक्षा बल विरोधियों को चुप कराने के लिए भारी पैमाने पर यौन हिंसा कर रहे हैं। इस संगठन ने कहा है कि बंधक बनाए गए पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों का भी बलात्कार, सामूहिक बलात्कार और अन्य तरीके से यौन हमले करके शोषण किया जा रहा है। संगठन की महिला अधिकार डेस्क की निदेशक कैथरीन बोथ ने इस मामले में बीबीसी से बात की।
The sexual violence is being used as a tool of repression within police.
कैथरीन कह रही थी कि पुलिस थानों में, जेलों में, अनाधिकृत बंदी गृहों में और यही नहीं विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वारों और सड़कों पर भी यौन हिंसा को दमन के एक हथियार के बतौर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब्देल फतेह अल सीसी की सरकार आने के बाद यौन हिंसा के खिलाफ लड़ने का जो दावा किया गया था, दरअसल वो सुरक्षा बढ़ाने के नाम पर पूरी तरह धराशाही हो गया है। जिन अधिकारियों के पास लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, वे खुद बड़े स्तर पर यौन हिंसा करवाने में शामिल हैं। ये थे इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स की महिला अधिकार डेस्क की निदेशक कैथरीन बोथ के शब्द। बहरहाल मिस्र के आंतरिक मामलों के मंत्री ने इस रिपोर्ट पर अपनी टिप्पणी देने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि वे पहले इस रिपोर्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद ही अपनी कोई प्रतिक्रिया देंगे। मिस्र में यौन हिंसा की घटनाओं पर कई सालों से काम कर रही स्वतंत्र पत्रकार शहीरा अमीन कहती हैं कि इस तरह के तरीके कई दशकों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
Sexual violence by security personnel is not a new practice. It happened in the prison.
शरीन कह रही थी कि सुरक्षा अधिकारियों का यौन हिंसा करना कोई नई बात नहीं है। ये नासिर और मुबारक के दौर की जेलों में भी हुआ करता था और अब सीसी के दौर में भी हो रहा है। ये दमन का एक हथियार है क्योंकि यौन हिंसा के साथ कलंक वाली मानसिकता जुड़ी होती है। मिस्र में एक महिला की पवित्रता को परिवार के सम्मान के साथ जोड़ा जाता है, इसलिए महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा से सुरक्षा बल न केवल उस लड़की को बल्कि उसके पूरे परिवार को तोड़ने और उसे अपमानित करने की कोशिश करते हैं। शहीरा अमीन कहती हैं कि उन पत्रकारों को भी निशाने पर ले लिया जाता है जो इस तरह की खबरों पर काम करते हैं।
In today's polarized Egypt, you're immediately labeled a traitor.
शहीरा कह रही थी कि आज के गुटबंदी वाले मिस्र में आपको तुरंत जासूस, गद्दार या एक विदेशी एजेंट घोषित किया जा सकता है, इसलिए इस बारे में बात करना भी बहुत कठिन है। ये थे स्वतंत्र पत्रकार शहीरा अमीन के शब्द। जुलाई 2013 में सेना ने राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी का तख्ता पलट कर दिया था। अब वे जेल में हैं और हाल ही में आई खबरों के मुताबिक उन्हें मिस्र की एक अदालत ने मौत की सजा सुनाई है।
ये बीबीसी है, आप दिन भर का पहला अंक सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। उत्तर प्रदेश के गांव में बुरी आत्मा से बचाने के लिए अभिभावक अपने नवजात बच्चों की उंगलियां खोलते हुए तेल में डाल रहे हैं। इसकी वजह से कुछ बच्चों को अपनी उंगलियों तक से हाथ धोना पड़ा है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं लखनऊ से अतुल चंद्रा।
रायबरेली के महाराजगंज ब्लॉक के जीवा गांव में जमोगा नाम की बुरी शक्ति का भय फैला हुआ है। अंधविश्वास की उपज जमोगा का डर इतना ज्यादा है कि जिस घर में साल भर से कम उम्र के बच्चे हैं, वहां लोग जमोगा कहने से भी कतराते हैं। ऐसा नहीं है कि ये औरतें डॉक्टरों के पास नहीं जाती हैं या यहाँ चिकित्सा की सुविधा नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद उनको डर है कि जमोगा आकर उनके बच्चे को ले जाएगा। जीवा की रमा देवी कहती हैं,
जमोगा मतलब यही बाहर वाला है, बड़ा वाला, उससे बच्चा को खतरा रहता है।
कैसे पता चलता है कि उसको बड़ा या छोटा क्या है?
ऐसे मतलब जैसे बच्चा दूध दूध पिया हुआ करा था, ज्यादा ज्यादा रुआवत है, और जो बलकार हो तो कहो तुमका बिरैया लागे नहीं, कहो आंखें घूरे नीली पीली, कहो कर ली है, ये वजह से पता लग जाता है।
ये अब 6 महीने की हो रही है, तो कैसे पता चला आपको कि इसको ये है, बड़ा या छोटा जो भी?
मतलब हम अम्मा हो रही नहीं रहे, मतलब मैं सास हूँ नहीं रहे, तो हम घर पर रहें, ती मार कसके आंखें मार घूरे घूरे लागी, मार कसके रोआ लागी, तो हमका थोड़ा शक लाग है, लेकिन हम भी अंगूरी जला देना, हम कहन कि जौन हो एक अंगूरी न रही वह चल जाई, लेकिन अगर जैसे लड़का न रही तो फिर हम का करब।
तो ये आपका पहला बच्चा है?
हाँ, माना तो जाई पहले तो भय है, 13 अठैया 12 तो नहीं ना एब की है।
तो उसको रोकने के लिए कुछ और भी उपाय होता है?
हमका नहीं पता अब वही कब
तेल में उंगली डाल के।
हाँ, लेकिन रात है यही रहा ना, 8-8 बजे के बाद आए, 8 बजे रात को कहाँ लेके जाये हम, इनके पापा नहीं रहे घर पर, कौन नहीं रहा, तो हमें समझ में जो नवा जोन कर दी ना।
कितने महीने की थी जब इसकी उंगली जलाई?
एक दिन रही 1.25 महीने के, एक अब 20 दिन भाई है, महीना कहाँ हो गई समझो।
2 बार उंगली जलाई?
हाँ, एक बाई एक दाई वाली है।
बिटिया कितने महीने की थी जब खत्म हो गई?
10 महीने की थी।
तो पता नहीं चल पाया कि इसको क्या हुआ है?
कुछ नहीं पता चल पाया।
और उसकी उंगली भी तेल में नहीं डुबाई?
नहीं, कुछ भी नहीं किया। दौड़ के गेंद गाय ने जाए कि जैस तक का गाय ने दवा लावे, फिर भी नहीं फायदा हुआ।
किस तरह का था?
उसको तो समझ में नहीं आते, दूध भी पीती थी, सब चूच करती थी, सब बरोबर हंसती थी, कभी नहीं हंसती थी, ऐसे रहा। वो बाद का अस्पताल लेके गए तो पीलप पर गया, बस उतने में खत्म हो गई।
और बाकी उसका पेट वेट सब ठीक रहता था?
पूरी शरीर भी ठीक थी, शरीर में कोई फर्क नहीं।
रायबरेली के शिवगढ़ में जहाँ से इस संस्था ने अपना कार्य शुरू किया था, ये अंधविश्वास अब खत्म हो गया है। संस्था के सहायक निदेशक भूपेश त्रिपाठी का कहना है कि जैसे जैसे संस्था अपना कार्य बढ़ाएगी और बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में औरतों को शिक्षित करेगी, इस तरह के अंधविश्वास अपने आप खत्म हो जाएंगे।
ये थी अतुल चंद्रा की रिपोर्ट। वाइन की बात होती है तो फ्रांस और यूरोप के दूसरे देशों के अंगूर के बागों की तस्वीर नजरों के आगे तैर जाती है, लेकिन अब बहुत जल्द आपको एक नई तरह की वाइन चखने का मौका मिलेगा जो बनेगी बिना अंगूरों के। मुजफ्फरपुर के शाही लीची अपने स्वाद के लिए दुनिया भर में विख्यात है और अब यही लीची बनाने में भी, वाइन बनाने में भी इस्तेमाल की जाएगी। एक रिपोर्ट के साथ पटना से नीरज साहब।
दुनिया भर में अभी तक वाइन के शौकीन अंगूर, स्ट्रॉबेरी जैसे फलों से बनी वाइन का लुत्फ उठाते रहे हैं, लेकिन अब वे बिहार की मशहूर शाही लीची से तैयार वाइन का स्वाद भी चख सकेंगे। दरअसल मदिरा और बिहार के बीच एक पुराना रिश्ता रहा है, वह यह कि मौर्य काल में शराब पर पहली बार टैक्स यहीं लगाया गया था। आज विश्व के किसी भी देश में शराब कर मुक्त नहीं है। मदिरा और बिहार के नए रिश्ते की शुरुआत फिर से बिहार से होने जा रही है। इसकी पहल मुजफ्फरपुर का राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र कर रहा है। केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर एस के पूर्वे के अनुसार,
लीची में जो न्यूट्रिएंट कंसिस्टेंट है या ऑर्गेनिक कंपाउंड के कंसिस्टेंट है वो ऑलमोस्ट ग्रेप के जैसे हैं। तो जब ग्रेप से अच्छी वाइन बन सकती है तो फिर नहीं लीची से बन सकती है। तो लीची से भी हम लोगों ने बनाया और काफी अच्छी सफलता मिली और 10-12% तक इसमें जो है अल्कोहल प्राप्त हुआ। और चूंकि शाही लीची जो है हम यहाँ की, उसमें एक इनहेरेंट जो है फ्लेवर है रोजी फ्लेवर, इसके चलते जो है इसमें जो वाइन बनी है उसमें भी एक अच्छा फ्लेवर है जो कि जनरली ग्रेप के वाइन में नहीं होता है।
फिलहाल सिर्फ चीन में ही लीची वाइन बनती है। भारत के लोग अब तक लीची से बनी वाइन के देशी स्वाद से महरूम हैं, लेकिन जल्द ही यह आम लोगों को मिल सकेगी। उत्पाद विभाग की वाइन पॉलिसी तैयारी के अंतिम चरण पर है। आलम तो यह है कि आज बिहार सरकार के उत्पाद महकमे के पास देश की शराब बनाने वाली कई नामी गिरामी निजी कंपनियां अर्जियां दे रही हैं। विभाग के संयुक्त आयुक्त नवीन कुमार मिश्रा बताते हैं कि बिहार में लीची से वाइन बनाने की प्रक्रिया राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर द्वारा तैयार कर इसे पेटेंट करवा लिया गया है। साथ ही वे बिहार और मदिरा के ऐतिहासिक बोध से भी परिचित कराते हैं। नवीन कुमार मिश्रा बताते हैं कि
बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां विश्व में सबसे पहली बार लीकर पर कंट्रोल तत्कालीन महामात्र चाणक्य जो मौर्य काल में थे उनके द्वारा लागू किया गया, और उसमें जो प्रोविजन है मदिरा अध्यक्ष का वो आज के उत्पाद आयुक्त एक्साइज कमिश्नर के समतुल्य पद था। जो भी लीकर बनता था उसका क्वालिटी क्वांटिटी सब पर नियंत्रण स्टेट का था।
देश में पहली बार लीची से वाइन बनाएगा बिहार, लेकिन अब देखना यह है कि राष्ट्रीय संस्थान का शोध, राज्य सरकार की वाइन पॉलिसी और वाइन बनाने वाली निजी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिहार की शाही लीची से बनी वाइन को कितना लोकप्रिय बना पाती है, यह भविष्य तय करेगा। पटना से नीरज सहाय।
अभी तक हमने सुना था कि एक रूसी बच्चे में एक भारतीय का दिल धड़क रहा है, लेकिन अब एक अफगानी को भारतीय हाथ भी नसीब हो गए हैं। ये कहानी है अफगानिस्तान के कैप्टन अब्दुल रहीम की, जो बम निरोधी दस्ते के सदस्य थे और जिन्होंने कंधार में बम को निष्क्रिय करने के प्रयास में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। अब केरल में कोची के जॉर्ज को के दोनों हाथ अब्दुल रहीम को लगाए गए हैं। सुनिए इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
जिंदगी के पास अजब गजब के अनुभवों की कमी नहीं है। अफगानिस्तान के कैप्टन अब्दुल रहीम की जिंदगी और उनके अनुभव भी बड़े दिलचस्प हैं। कैप्टन अब्दुल रहीम अफगान सेना में बम को निष्क्रिय करने का काम करते थे। 2012 में जब एक बम निष्क्रिय करने की कोशिश कर रहे थे, बम एक धमाके के साथ फट पड़ा और कैप्टन अब्दुल रहीम इस हादसे में अपने हाथ गंवा बैठे। इसके बाद रहीम अपने इलाज के लिए सारी दुनिया में छानबीन की, लेकिन कहीं इलाज संभव नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। इसी उम्मीद के साथ आखिरकार वे पहुंचे कोची के अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। यहां भी इलाज तो संभव था, मगर केवल तभी जब उन्हें ट्रांसप्लांट करने के लिए कोई हाथ दान देता। आखिर 6 महीनों के बाद उनका इंतजार खत्म हुआ। अस्पताल में ब्रेन डेड हालात में एक मरीज पहुंचा। जॉर्ज नाम के इस मरीज के ये हालात एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में हुई थी। अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्लास्टिक सर्जरी के प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रमण्य अय्यर कहते हैं,
हमने जो काफी टाइम इनके साथ जो काउंसलिंग के लिए ये थे 5-6 सेशन, क्योंकि ट्रांसप्लांट का जो बारे में कैसे करते हैं, उसका जो दवाई का असर क्या है और जो रेसिपिएंट मिलने में मुश्किल होगा, ये इधर रहना पड़ेगा कम से कम, और ऑपरेशन के बाद भी एक का रहना है, वो सारी वो तैयार थे। और उसके बाद जो मिस्टर जॉर्ज का जो डेथ हुआ, ब्रेन डेथ हुआ, उनका ब्लड ग्रुप इनका एक ही था, इसलिए हमने मिस्टर जॉर्ज के साथ बात किया, तो उन्होंने सोचने के बाद बताया कि डोनेट करने के लिए तैयार है। उसके बाद रहीम का ब्लड और इनका ब्लड का और क्रॉस मैच हुआ और उसमें भी वो दोनों मैचिंग थे।
डॉक्टर अय्यर का कहना है कि रहीम का रवैया सकारात्मक था, लेकिन रहीम इतने आत्मविश्वास से कैसे भरे थे? रहीम कहते हैं, पिछले अक्टूबर में जब यहाँ पहुँचा तो मनु का ऑपरेशन हुआ था, उससे मुझे बहुत आत्मविश्वास आया और अब मैं बहुत खुश हूँ। ये तो मेरा खुद का हाथ लगने लगा है। मैं जॉर्ज को कभी नहीं भूल पाऊंगा और जब मैं मरूंगा मेरा सारा शरीर दान कर दूंगा। ये थे अब्दुल रहीम के शब्द। रहीम को अगले 10 महीने हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। डॉक्टर अय्यर कहते हैं,
ना 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 ना, वो टाइम लगता है, मगर अभी जो मूवमेंट जो आ रही है, इनका जो मसल है वो टेंडन से हड्डियों तक मूवमेंट पहुंचाते हैं, मगर सेंसेशन के लिए वो सेंसरी नर्व का रिकवरी होना है, वो कम से कम 5-8 महीना लगेगा।
रहीम की कहानी की एक और दिलचस्प बात है। अफगानिस्तान के गोरे चिट्टे रहीम को सन वाले जॉर्ज का हाथ लगाया गया है। हमने रहीम से पूछा कि क्या उनको जॉर्ज के काले हाथ से तकलीफ होगी, तो उन्होंने कहा कि जिस्म के रंग से क्या फर्क पड़ना है, उन्हें नया हाथ मिला है जो सबसे अहम है। बेंगलुरु से इमरान कुरैशी।
और अब देखते हैं खेलों की दुनिया में क्या हो रहा है। आदेश, आज बहुत कम समय है आपके पास।
जी, लेकिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कोई विदेशी टीम वहां पर 6 सालों बाद आखिरकार सीरीज खेलने के लिए पहुंची है और वो टीम है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की टीम आज तड़के पाकिस्तान पहुंची, जिसे कड़ी सुरक्षा दी गई है। जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में 2 20-20 और 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगी। इस अवसर पर लाहौर के प्रांतीय गृहमंत्री शुजा खान ज्यादा ने उम्मीद जताई कि जिम्बाब्वे के बाद भी टीमें पाकिस्तान आना जारी रखेंगी।
सिक्योरिटी इंशाल्लाह फुल प्रूफ है, इंतजाम बहुत अच्छे हैं। ग्राउंड मैंने कल चेक किया है, वहाँ पर पानी दे रहे हैं, ग्राउंड की मेंटेनेंस हो रही है। मैं समझता हूँ लाहौर के अवाम और पाकिस्तान के अवाम बहुत अच्छी सीरीज देखेंगे, ये T20 और वन डे जो हो रही हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ये अच्छे तरीके से होंगे, खुश असलूबी से होंगे और बाकी टीमें इसके बाद आएंगी।
और IPL 8 में पहले क्वालिफायर में मुंबई इंडियंस ने चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है।
बहुत धन्यवाद आदेश। और अब चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। नौकरशाहों की नियुक्तियों पर उपराज्यपाल नजीब जंग से चल रहे टकराव के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक बम धमाका हुआ है जिसमें कम से कम 5 लोग मारे गए हैं और कई घायल हो गए हैं। काबुल में एक हफ्ते के भीतर ये तीसरा बड़ा हमला है। BBC समाचार।
दिन भर को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। स्टूडियो संभाला था कुणाल शर्मा ने। रेहान फजल को इजाजत दीजिए, नमस्कार।